ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. आप पिछले दो तीन दिन से मेडिटेशन राजयोग अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति के एक नॉर्मल लाइफ में अत्यंत आवश्यक है. जिस संसार में हम सब जी रहे हैं वो कोई आसान स्थान नहीं है, ये कोई कुरुक्षेत्र से कम नहीं है. कर्म क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र कहा जाता है, अर्थात कर्म करते, कार्य करते और लोगों के साथ हम व्यवहार में आते, उनकी इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनके जो व्यवहार को टॉलरेट करके, अंडरस्टैंड करके फिर हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी पाना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. हाँ जी, एक कंपनी चलाना, मशीन्स चलाना, नो बिग डील. सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी के जेट्स है उसको चलाना, नो बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है. रॉकेट चलाना, नासा में काम करना, बड़ी बात नहीं है. एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी से, आराम से, प्यार से चलना, वेरी बिग थिंग. यस और नो? इसलिए राजयोग हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है. या देयर वाज अ टाइम वेयर मेडिटेशन यूज्ड टू बी अ फैशन, पर अभी के समय अनुसार मोर देन अ फैशन ये नीड है, आवश्यकता है. या आज टाइम के बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे. वैसे आज के हिसाब से हमें राजयोग की प्राप्ति क्या है, आत्मा परमात्मा जैसे बहन जी ने कहा, और राजयोग की विधि हमने सीखी, पर आज वास्तव में हमें ये जानना जरूरी था कि वो राजयोग करना क्यों है. एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये करने से इसकी प्राप्ति क्या है, यू नो, एंड वो जो एबिलिटीज है, स्किल्स है व्यक्ति में, क्या जो हिडन है, छिपी हुई है, वो उभर के आएंगे. पर आई वॉज आस्क्ड टू शेयर समथिंग अबाउट द टाइम. इट टेक्स एक्चुअली लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड टाइम, बट हम आपको बहुत ही सहज तरीके से उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे. आप में से कौन है जो घर में कोई भी शुभ कार्य चलता है तो स्वस्तिका लगाते हैं? वेरी गुड. या ओम लिखते हैं? ओम लिखते हैं, स्वस्तिका लिखते हैं, दोनों कौन लिखता है? वेरी गुड. खास करके जब दिवाली पे नया छोपड़ा बनाते हैं, उसमें स्वस्तिका लिखा जाता है, या गृह प्रवेश करते हैं तो स्वस्तिका लिखा जाता है, नई गाड़ी का उद्घाटन जो भी होता है, प्रारंभ होता है तो स्वस्तिका किया जाता है, है ना? क्यों करते हैं? व्हाई डू यू डू दैट? शुभ माना जाता है. वेरी गुड. उसको शुभ माना जाता है, इट्स अ नाइस सिंबल. सिर्फ स्वस्तिका लिखने से शुभ हो जाता है? आपने लिख दिया, पुरोहित आया, पंडित आया, वो दीवार पर या दरवाजे पर या गाड़ी पर कहीं भी वो स्वस्तिक का बना दिया तो हो गया शुभ। जी राइट, अपने भाव को भी शुभ करना है एनीवे। लेकिन हमें हम उसको लिख देते हैं, बना देते हैं वो स्वस्तिका, लेकिन उसका अर्थ क्या है, क्यों वो स्वस्तिका बनाया गया, वो इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ और ये स्वस्तिका ही क्यों लिखा जाता है, शायद हम इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। स्वस्तिका में दो चीजें हैं जो इंसान के जीवन से संबंध है। नंबर वन ये है स्वस्थिति। हर जीवन के हर दिन हर परिस्थिति में व्यक्ति के मानसिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ माइंड इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके जीवन में शुभ है अशुभ है वो परिस्थितियां नहीं है, शुभ है अशुभ है वो आपके मन की स्थिति है, मन की सोच है। आप हर बार वो लिखते हैं वो तो एक ड्राइंग ही माना जाएगा ना एक प्रकार से। हर बार वो जब लिखते हैं आपके मन में ये विश्वास है कि शुभ है, ये शुभ है थॉट, वो जो सोच है वो जो मन की स्थिति, वो लिखने के समय जो आपके अंदर एक ऑस्पिशियस फीलिंग आते हैं वो शुभ है, बाकी वो ड्राइंग शुभ नहीं है। और उसके ऊपर जो हमारा विश्वास है कि करने से अच्छा होगा वो शुभ है। वो बगैर लिखे भी ऐसे सोचो कि सब शुभ होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा तो अच्छा होगा। एक ड्राइंग बड़ी है, इंसान बड़ा है। आत्मा का सोच, आत्मा एक शक्ति है, आत्मा का हर सोच एनर्जी है, तो वो बहुमूल्य है। या पिक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं वो बहुमूल्य है। जीता जागता इंसान वैल्यूबल है। ये जो चित्र निकालते हैं कल मिटा दिया जाएगा या मिट जाएगा, वो इम्पोर्टेंट ये बहुमूल्य है। तो मैं आत्मा आई एम वैल्यूबल, मेरे हर सोच वैल्यूबल है, मेरा हर सोच शुभ या अशुभ हम अपने लिए ही बनाते हैं। वी क्रिएट फॉर्च्यून, वी क्रिएट यू नो तकदीर है हमारे ऐसे हो गए, हम स्वयं बनाते हैं। चाहे श्राप हो चाहे दुआएं हो, हम स्वयं बनाते हैं। कहीं आसमान से कहीं उतर के नहीं आएंगे या कुछ लिख देने से कुछ नहीं होगा। नंबर वन ये स्वस्थिति की निशानी है, अर्थात ये पूरे ये जो संसार है वो एक चक्र है। इट्स अ साइकिल ऑफ टाइम। देयर इज नो टाइम इन द एंटायर साइकिल वे यू एंड मी नेवर एग्जिस्टेड। ये श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य है। हे अर्जुन, इस समय चक्र में ऐसा कोई समय नहीं है जहां आप और हम ना हो। अर्थात ये पूरे चक्र में हम हमेशा ही है। तो इससे शुभ और क्या हो सकता है जी। नंबर वन, इससे एक बहुत बड़ी बात यह है कि इंसान के जीवन से समय जुड़ा हुआ है। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, नथिंग बट टाइम। हां जी, हम कितने साल जिएंगे तो टाइम है ना। ये कार्य कितने वक्त में कर लिया जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो डॉक्टर से ये पूछता है, हमारे पास अभी कितना टाइम है। हाँ जी, भगवान से हम प्रार्थना करें अब 100 साल जिए, तो 100 साल एक निर्दिष्ट समय है। हर श्वास जो हम लेते हैं समय है, हर सोच हम सोचते हैं टाइम है, वो समय है। तो लाइफ इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू। अनफॉर्चुनेटली हमने ये इक्वेशन थोड़ा उल्टा कर दिया। लाइफ इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू लाइफ। हाँ जी, वो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप में से कौन कौन चाय कॉफी लेते हैं, दूध चाय कॉफी वट एवर, वेरी गुड। उसमें अगर थोड़ी सी चीनी हो तो अच्छी लगेगी ना। हाँ, डायबिटीज है तो अलग अलग बात है, पर अगर कॉफी में चाय में शुगर ना हो मजा आएगा, आएगा मजा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा। तो चीनी कॉफी में चाय में आवश्यक है, क्योंकि दैट गिव्स अ टेस्ट, लेकिन कितना? क्योंकि शुगर अच्छा है, हम खीर खा रहे हैं, अभी खीर क्या है जिसमें शुगर ना हो, मीठा ना हो, मीठे के लिए तो खीर खाया जाता है। चलिए, खीर खाना अच्छा है, मीठा होना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं आप 1 किलो डाल दो, 1 कटोरी भर के खीर में आपने 20 चम्मच शुगर डाल दिया, फिर क्या होगा? इस संसार में हर चीज का एक लिमिट है। इफ यू एक्सीड द लिमिट, वो दुखदायी बन जाएगा। हर सुख देने वाली चीज दुख से ही खत्म होना है। अगर हम लिमिट के अंदर रहेंगे तो हमें सुख देगा। तो पैसे भी जरूरी है, कितना क्वेश्चन? हाँ जी, तो वो खराब चीज नहीं है, लेकिन हमने इक्वेशन ही बदल दिया। ये कहा कि लाइफ इज इक्वल टू मनी, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम श्वास लेते हैं, एक सेकेंड, आई हैव सीन पीपल यू नो ब्रीदिंग लास्ट, अंतिम श्वास हो गए, एक सेकेंड लगता है, जीवन खेल खत्म हो गया। फिर पीछे से कुछ भी मेरे पास हो, करोड़ हो, वो हो, लोग हैं, इज्जत है, सब पीछे छूट गया, आत्मा निकल गई, ओम शांति। सो नंबर वन है कि स्वस्ति का हमारे पूरे समय चक्र में हमारी स्थिति का सूचक है। सेकेंड, हमें समय बताते, समय का सूचक है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वेयर वॉच, घड़ी कौन कौन पहना है? कुड यू प्लीज रेज योर हैंड, अभी कौन पहना है? वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल तो मोबाइल में सब है, तो बहुत करके लोग नहीं पहनते। क्यों पहनते हैं घड़ी? क्यों पहनते हैं? हाँ जी, और घर में भी दीवार में टांग के रखते हैं, बेडरूम में भी टांग के रखा हुआ होता है। हाँ जी, क्यों चाहिए घड़ी? हाँ? समय देखने के लिए। एक्चुअली हम हर कार्य के लिए समय देखते हैं, हाँ या ना, हर कार्य के लिए समय देखते हैं, क्योंकि इंसान का कर्म भी समय के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय के भीतर भीतर ये काम हो जाना चाहिए। हाँ जी, सेकेंड बात, हम हर कर्म करते समय मुहूर्त देखते हैं। आप में से कौन कौन मुहूर्त देखता है? कुछ लोग पता है घर से बाहर निकलने के लिए भी मुहूर्त देखते हैं, भैया ये राहु काल तो नहीं है, हैं जी? अभी 8:27 पर राहु की दशा है, इसलिए हम 8:25 में निकल जाएंगे या तो 28 के बाद निकलेंगे, क्योंकि 27 में शनि बैठा है या राहु बैठा है, वॉट एवर इट इज, तो ये मानते हैं ये। तो कई लोग जो घर से बाहर निकलने के लिए भी वो लोग मुहूर्त देख के निकलते हैं। हाँ, वैसे तो अच्छे काम करने के लिए तो मुहूर्त देखते ही हैं, या इस घड़ी में 1-2 सुई है, ठीक है? टाइम एक क्लॉक में 2 सुई है, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है? एक राउंड, एक बार पूरा चक्र घूमने में कितने समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को क्या कहेंगे? 1 आवर, ऐसा ही ना? मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में वीक हूं, सो 60 मिनट्स में 1 आवर, 1 घंटा कहा जाता है। आप में से कौन है जिनको एक क्वेश्चन आया हो, ये कैसी बात है भैया, व्हाट इज दैट 60 मिनट्स? या तो 50 होना चाहिए, ये 75 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ये 60 क्या है? यू नो इट्स सो ऑड। ऐसा कभी आपके मन में प्रश्न आया? आया? तो फिर इसका समाधान क्या है? कुछ नहीं है, किस किस को आया ही नहीं, चलो चल रहा है 60 मिनट्स हो, 50 मिनट्स हो, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, चल तो रही है जिंदगी, जाने दीजिए। अच्छा, हमने सब एक्सेप्ट कर लिया है ना, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, राइट? अच्छा, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स है? वो भी 60 भैया, वो भी 50 नहीं है, 75 नहीं है, 100 नहीं है, वो भी 60 है, ये कैसी मैथमेटिक्स है? चलिए, एक हफ्ते में कितने दिन है? 7 दिन को क्या कहा जाएगा? 1 वीक कहा जाए। ये 7 दिन क्यों है? 10 दिन होना चाहिए या 5 दिन होना चाहिए? ये पूरा सिस्टम। और 30 दिन को क्या कहेंगे? एक 1 मंथ। 1 मंथ में 30 दिन ही क्यों है? 35 दिन होना चाहिए था, या तो फिर 25 दिन होना चाहिए था, ये किसी में 31 है, किसी में 30 है, ये कौन डिसाइड किया, ये क्यों ऐसा है? और 1 ईयर में 12 महीना है, 15 महीना होना चाहिए, 10 महीना होना चाहिए, और फिर ये अभी ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर क्या होगा? फिर जनवरी आ जाएगा, फिर दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा। आज कौन सा दिन है? संडे। संडे ये मंडे, संडे, आपको तो याद है आज का दिन, लोग यहाँ आते हैं भूल जाते कौन सा दिन है, हाँ? एनीवे, तो संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर संडे आ जाएगा। ये चक्र है, पूरी जिंदगी, सृष्टि ही एक चक्र है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब ये घड़ी घूमती है या दिन घूम करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर संडे हो जाता, वो फिर एग्जैक्टली हूबहूब अगला चक्र घूमने पर 60 सेकेंड्स ही होंगे, तीसरा चक्र में भी 60 सेकेंड्स ही होंगे, चौथे में, पांचवे में भी 60 ही होंगे, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा। चलो इस हफ्ते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो गया, फिर अगले में मंडे से शुरू हो, ऐसा भी नहीं है, फिर वो वही वही होता है। तो इसमें दूसरा हमने जो समझ आया वो ये है कि एक तो ये चक्र है, सेकेंड ये रेपिटेशन है, वेर एवर देर इज अ साइकिल, चक्र है, वह रेपिटेशन होता है, ऐसा घूमता रहता, ठीक है। और एक व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ये जानना कि इस सृष्टि चक्र के समय में अब मैं कहां हूं, ये समय देखना जितना इंपॉर्टेंट है कि इस समय में मुझे कहां होना चाहिए, अब वहां पहुंचने के लिए मुझे और कितना समय लगेगा, ये हम ये टाइम देख करके निर्धारित करते हैं। इसी तरह इस सृष्टि चक्र में हम अभी कहां हैं, व्हाट इज द टाइम इन द साइकिल ऑफ यू नो वर्ल्ड साइकिल में या टाइम साइकिल में, अब व्हाट इज द टाइम। स्वस्तिका, कमिंग बैक टू स्वस्तिका, यह स्वस्तिक में चार क्वाड्रेंट्स है, हां जी, जब हम स्वस्तिका बनाते हैं इसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो इस पूरे सृष्टि का, ये जो समय का सूचक है, ये सृष्टि मन की स्थिति का सूचक है। तो इस समय के सूचक के हिसाब से वो स्वस्तिक हमको ये बताता है कि समय चक्र में चार भाग है, चार भाग बनाया है, जैसे हमारे एक दिन में भी चार भाग है ना, सवेरे दोपहर शाम और रात, हमारी जिंदगी में भी चार स्टेजेस है, यू नो बचपन युवा और चार आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम संन्यास, ये चार आश्रम है और चार सीजन्स है, सीजन में भी चार है ना सीजन्स, अभी कौन सा सीजन है, मॉनसून है, बरसात का सीजन, इसके बाद फिर विंटर आ जाएगा, चार सीजन है। इसी तरह ये पूरे सृष्टि चक्र में भी चार युग या चार पार्ट, चार भाग है, जिसको युग कहते हैं, जैसे सात दिन का एक हफ्ता कहते हैं और बारह महीने को साल कहते हैं, तीस दिन को महीना कहते हैं, ऐसे ये चार जो भाग है, एक एक भाग को एक युग कहा जाता है। अब एक युग में कितना समय है, एक युग में 1250 साल है, एक क्वाड्रेंट में, एक युग में 1250 साल है, ठीक है। तो पूरा चक्र में फिर कितने साल हुए, कितने साल हुए, 1250 इंटू चार, तो एक बार ये सृष्टि का चक्र घूमने में, वन साइकिल होने में 5000 साल लगता है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा है। हम बाबा हमको ये सिखाते हैं कि सृष्टि, हम सभी भी अगर जीवन में बहुत खुशी खुशी जिंदगी जीना हो, एक बात हम हमेशा याद रखें, वो ये कि ये संसार एक रंगमंच है जिसमें हम सब अपने अपने रोल अदा करने आए हैं, जिसके जैसे कर्म, जिसके जैसे संस्कार, संस्कार अनुसार, कर्म अनुसार, हम सब इस रंगमंच पर अपना अपना पार्ट अदा करने आए हैं। हमको ऐसा पार्ट क्यों है, भगवान ने क्यों दिया, भगवान ने नहीं दिया भैया, आपने स्वयं चुना, यू चूज योर रोल, आपके संस्कार अनुसार, हम अपने कर्म अनुसार, हम अपना जो पात्र है हम स्वयं चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति राजा की तरह बहुत अच्छा पाठ बजा सकता है और वो देखने में भी राजा जैसा दिखता है तो उसको राजा का रोल दिया जाएगा ना, हाँ जी। और कोई है जो बहुत अच्छा भिखारी का पार्ट बजा सकता है, वो ऐसा पार्ट करेगा जो सचमुच में लोगों को लगेगा कि ये भिखारी होगा। हाँ, कोई ऐसा है, ऐसा वो दुख की कहानी वो बोल सकता है, अपने दुख की पीड़ा सुना सकता है, किसी के आंखों में आंसू आ जाए, इतना अच्छा वो, जबकि वो दुखी है नहीं, इतना अच्छा रोएगा, इतना अच्छा बोलेगा कि किसी को लगेगा अरे बेचारा दुखी आत्मा है। तो जो जिसके अंदर जैसी टैलेंट है, स्किल है, वो उस तरह का पार्ट वो बजा सकता है। इसी तरह हर आत्मा के संस्कार और कर्म जैसा है वैसा ही हम अपने संसार में पार्ट चुनते हैं, और जिनके साथ हमने जिस तरह के कर्म किए हुए होंगे वही हमारे कर्म के साथी बनते हैं। जो परिवार बन के हमारे आएंगे, बच्चे बन के, माता पिता बन के, पत्नी बन के, पति बन के, दोस्त बन के, भाई बहन बन करके हमारे साथ जीवन शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे ही कर्म के वो साथी हैं। चाहे अच्छे कर्म, कई ऐसे हैं जो जब से हम उस घर में जन्म लिए हैं, भाई बहने माता पिता से हमें इतने सुख मिले, इतने सुख मिले, बहुत सुख मिले, क्योंकि हम उन लोगों के साथ, उन आत्माओं के साथ किसी जन्म में अच्छे कर्म साथ मिलके किए हैं, तो उस कर्म का फल हम साथ मिलके अब सुख भोग रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं जब से उस घर में जन्म लिए हैं दुख ही दुख है, झगड़ा ही झगड़ा है, अशांति अशांति है, किसी न किसी जन्म में उन लोगों के साथ मिल करके हमने ऐसा कर्म किए हैं जो हमने दूसरों को दुख देने वाले, दूसरों का शांति फैलाने वाला कर्म किए हैं, जिसके बदौलत आज उन्हीं लोगों के जिसका फल जब मिलता है हम साथ मिल करके भोग रहे हैं, दुख ही दुख भोग रहे हैं, एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। यदि हमने आपको दुख दिया, आपने हमको दुख दिया, उसका फल जब भोगने को आएगा तो साथ तो मिलना तो पड़ेगा, हैं जी, मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम परिवार बनते हैं, साथी बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, ऑफिस में जो हमारे कलीग्स हैं जिनके साथ हम काम करना है, जिनसे हम काम कराना है, इस तरह कैसे इस संसार में हम एक अभिनय हमको करना पड़ता है सुख दुख का। जीवन में एक दो ही चीज है, या तो सुख या तो दुख, जीवन में दो ही बातें हैं, लेना देना। अब ये लेना देने में या तो सुख दे रहे हैं ले रहे हैं, या दुख दे रहे हैं ले रहे हैं, ओनली टू थिंग्स, दो ही बातें हैं, लेना देना। और इस लेन देन में या तो सुख ले रहे हैं दे रहे हैं, या तो दुख ले रहे हैं दे रहे हैं, बस दिस इज ऑल द लाइफ इज अबाउट। और हम जो कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, हाँ जी, सुख के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर हम जीवन में बहुत ही हर परिस्थिति में खुश रहना है तो ये पूरे चक्र में जो अभी का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसको शुभ, अत्यंत शुभ माना जाता है। अब ये चार जो भाग है, चार जो युग है, सबसे पहला सृष्टि का आरंभ का जो समय है उसको स्वर्ग या सत्युग कहा जाता है, गोल्डन एज, गोल्डन टाइम। जैसे प्रातः काल जब हम उठते हैं, प्रभु के नाम लेके उठते हैं, सब फ्रेश फ्रेश है, हैं जी, सो दैट्स द गोल्डन टाइम। और फिर इसको सत्युग कहते हैं। फिर जब दोपहर का समय होता है उसको हम त्रेता युग कहते हैं, हैं जी, उसमें भी 1250 है। और शाम का समय जब हम बोलते हैं उसको हम द्वापर युग कहते हैं, हैं जी। शाम के समय क्या करता है इंसान, काम काज करके वापस आता है, फिर फ्रेश होके फिर पूजा पाठ करता है, कुछ अच्छा भजन करेगा, कुछ अच्छा करेगा, यू नो, बहुत करके शाम को कोई मंदिर जाता है, कोई आरती करता है, कोई गीता पाठ करता है, तो शाम का समय पूजा पाठ। तो भक्ति भी जो है द्वापर से शुरू, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे भक्ति हैं, वो सब कुछ जो है द्वापर युग से शुरू होता है। द्व माना टू, डिफरेंट थिंग्स, कर्म और धर्म भिन्न हो जाता है। सत्ययुग और त्रेता में धर्म और कर्म एक होता है, और द्वापर में धर्म और कर्म भिन्न हो जाता। धर्म इज नथिंग टू डू विथ कर्म एंड कर्म इज नथिंग टू डू विथ धर्म, तो भिन्न हो जाता है। द्व टू डिफरेंट मार्ग लेते हैं। एंड रात्रि फिर क्या करता है इंसान, अंधकार हो जाता है, खा पी के सो जाता है। तो अब जो समय है कौन सा समय है, तो इसीलिए लोग अंधकार में जी रहे हैं, खा पी के। लोगों को लगता है जीवन क्या है भैया, खाओ पियो मौज करो सो जाओ बस हो गया, ये अंधकार है। पर अंधकार के रात के बाद फिर क्या आना है, रात के बाद फिर सत्ययुग आना है, फिर दिन आना है, हाँ जी। और रात्रि में भय भी होता है, रात्रि में डर लगता है ना, अंधकार में डर लगता है, अंधकार में कंफ्यूजन, अंधकार में राइट डिसीशंस नहीं होंगे, निर्णय हमारा यथार्थ नहीं होगा क्योंकि अंधकार है। तो ये कलयुग जो है ये दिन और रात सूर्य के हिसाब से अंधकार की बात नहीं है, ये कलयुग जो है अज्ञान रूपी अंधकार है। अर्थात मन और बुद्धि, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है ना, ये मन बुद्धि के सामने इतने सारे पर्दे हमने लगा दिए हुए हैं, द्वापर युग से लेकर के इतने सारे पर्दे लगा दिए हुए हैं, हमको सच और गलत दिखाई भी नहीं देता। दिखाई देना तो दूर, समझ में भी नहीं आता। आपको एक सीक्रेट बताएं, इंसान जब बात करता है आवाज बहुत लाउडली क्यों बात करता है, इसमें दो बातें हैं। जब व्यक्ति से बहुत प्यार होता है ना, धीरे धीरे बात किया जाता है। जब व्यक्ति के साथ गुस्सा है ना, बहुत आवाज से बात करता है, ये लॉजिक क्या है। और जब बहुत लाउडली बात करते हैं ना, समझ में नहीं आता, जितना लाउड है समझ में नहीं आता, दिख भी रहा है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लाउडनेस में गुस्सा है, गुस्सा अंधकार है। तो बहुत बड़ा आवाज से भी बोल रहे हो, बुद्धि समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो पर्दा जो है ना वो गुस्से का अंधकार है, वो अंधकार के पीछे उस शब्दों का अर्थ नहीं समझ आता। तो यहां अंधकार जो है वो रात और दिन की बात नहीं है, यहां अंधकार की बात है अज्ञान की, इग्नोरेंस, बेसमझ, नासमझ की बात। हम समझ नहीं पाते, जीवन को नहीं समझ पाते, खुद को नहीं समझ पा रहे, साथियों को नहीं समझ पा रहे, परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे, ईश्वर को नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल किसी बात का समझ नहीं है, जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो समझना अनिवार्य है, वो सारी बातें हमको नहीं समझ है। हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जिनके बगैर भी जीवन चलाया जा सकता है, उसकी बहुत डिटेलिंग में हम जाते हैं। आसमान में कितने सितारे हैं ये जानो ना जानो, इसके बगैर भी तो जीवन जिया जा सकता है, हाँ जी। पानी के अंदर क्या तत्व है ये न जानने पर भी जीवन तो जिया जा सकता है। हाँ, ये संसार में कमाने के लिए ये सारी बातें अनिवार्य हो गया है, पर जीवन जीने के लिए कुछ और बातें हैं जो अनिवार्य हैं। जो हमें पता ही नहीं है, यह है अज्ञान। हम डिग्रियां हासिल करना हमारे लिए बहुत इजी बात है, अच्छे ऊंच पद पर हासिल होना बहुत इजी है, मगर जीवन खुशी खुशी जीना बड़ा कठिन क्यों है? इंटरेस्टिंग थिंग। आपको गणित ऐसा आते टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द फिंगर्स, 134 × 155 आप फटाक से बोल सकते हैं। अब ये ना भी बोले तब भी जीवन जिया जा सकता है। अर्थात इस संसार की सारी बातें हम जानते हैं, पर खुद को खुश रखना नहीं जानते। क्या यह अज्ञानता नहीं है? हाँ जी, हम आपके साथ में जो बैठे उनके बारे में बोले, हम एक किताब लिख सकते हैं। हम अपने घर में अपनी पत्नी के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में बोलना, हम एक बुक लिख सकते हैं। खुद के ही बारे में आप दो शब्द बोलो, ओनली अबाउट यू, इसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई आप संबंध, सिर्फ आप अपने बारे में बोले, हमको लगता है क्या बोले भैया अपने बारे में, क्या बोले, हमको नहीं पता। जो जीवन का एसेंस है, सार है, वो बहुत समय पहले हमने खो दिया हुआ है, इसलिए निस्सार जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ है ही नहीं, सब हमारे साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेलापन। हमारे आसपास 10 लोग देखभाल के लिए होते हुए भी हमको भय लगता है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्या जीवन है ये? सार ही नहीं है, निसार जीवन। लेकिन हमको लगता है हमारे पास बहुत कुछ है, इसीलिए अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए हम बहुत चीजें इकट्ठे कर लेते हैं, चीजें इकट्ठे करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, हमको लगता है सिक्योर है। चीजों से इंसान की भावनाएं सिक्योर नहीं हो सकते। जीवन आपके भावनाओं के साथ संबंध रखता है, जीवन आपके सोच है, आपकी इमोशंस आपके जीवन है, आपके फीलिंग्स आपके जीवन है। वो तो खोखला है, उसमें तो कुछ नहीं है। तो बाहर के हम बहुत सारे फोर्ट बना दे, किले बना दे, तो क्या फायदा? किले के अंदर रहने वाला राजा दुखी है, तो बना दे 10 किले बना दे, चीटी भी घुस न सके, फिर भी अंदर जो रहने वाला भाई से ही तो जी रहा है, कहा हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुखी तो है। दिस इज नॉट लाइफ। तो इसको अशुभ कहा जाता है। जीवन शुभ तब है जब व्यक्ति खुश है। अगर हमारी जिंदगी से खुशी गायब है, वो जीवन शुभ नहीं है। बच्चा जन्म लेता है, मुहूर्त देखा जाता है, शुभ घड़ी में जन्म लिया है। जब व्यक्ति का मृत्यु होती है तो ये देखा जाता है शुभ घड़ी में इसकी मृत्यु हुई। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसमें शुभ आवश्यक नहीं है। जब आया शुभ है, गया शुभ है, पूरी जिंदगी जो पड़ी है वो तो हर शुभ जीवन जी रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त में गया तो क्या हुआ, तो चला ही गया ना। व्यक्ति की जिंदगी शुभ तब है जब जीवन काल में हर घड़ी हर दिन खुशी खुशी जिंदगी जी सके, एंड दैट्स लाइफ, वो शुभ है। परिस्थिति बाहर का कुछ भी हो, पर मेरी जो स्वस्थिति है, मन की स्थिति है, मन की सोच है, द स्टेट ऑफ माइंड आई हैव क्रिएटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट मेक्स मी हैप्पी। जो बिलीफ सिस्टम मैंने अपने लिए क्रिएट किया, परिस्थितियों के लिए क्रिएट किया, दैट मेक्स मी हैप्पी। वो मुझे एक शक्ति देती है, हाँ कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये जो विश्वास के साथ में जी रही हूं, जो इस बिलीफ के साथ में जी रही हूं, इस मान्यता के साथ जीती हूं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मुझे अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों कि रात और दिन के बीच में एक बहुत शुभ घड़ी है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुना है ना ये शब्द? वो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? हाँ, तो ये 4 बजे का जो समय है ना, ना उसको दिन कहा जाए ना रात कहा जाए। तो रात पूरी होने पर दिन का आरंभ होने का ये शुभ घड़ी है। इसी तरह अब इस सृष्टि के चक्र में समय क्या है? जिसने अपने आप को परमात्मा की संतान समझा, माना, उसके लिए अब जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसको कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात कलयुग पूरा होने पर है और सत्ययुग अर्थात दिन प्रारंभ होने का ये घड़ी है। तो इस घड़ी में स्वयं कल्याणकारी परमात्मा अपने बच्चों को सवेरे दिन में जाने के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, शक्तियां देता है। कहां बच्चा है भैया? बच्चे में ही हालत है, तो बड़ा होगा तो और क्या होगा? ये मान्यता है, क्योंकि व्यक्ति वैसे देखा जाए लाखों वर्ष अभी यही चक्र 10 बार घूमेगा। जब से हम जन्म लिए हैं अब तक के कितने घंटे हो गए हैं? हाँ जी, वैसे एक बार घूमने में 60 सेकेंड्स ही होंगे, 60 मिनट्स ही होंगे, पर ऐसे 60 मिनट्स कितने बार हो गए हैं? हाँ जी, इसका कोई अंत भी तो होता है ना। अच्छा, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है, द सेंस ऑफ द होल ये ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से इसको ड्रामा चक्र, यू नो, इट्स अ साइकिल ऑफ ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा क्यों कहा जाता है? आप में से कौन कौन है जो फिल्म या मूवी या देखते हैं? वेरी गुड। क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं? हाँ, किस लिए? एंटरटेनमेंट, वेरी गुड। एंटरटेनमेंट किस लिए? एंटरटेनमेंट से खुशी मिलती है, वेरी गुड। सो ड्रामा माना एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट खुशी के लिए। सो ड्रामा किसके लिए? खुशी के लिए, ठीक है। ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए और एंटरटेनमेंट खुशी के लिए। इट मीन्स ड्रामा इज इक्वल टू खुशी, ठीक है। ड्रामा खुशी के लिए। तो ये जब ये पूरा चक्र इसको ड्रामा कहा जाता है, तो ये ड्रामा किसके लिए है? खुशी के लिए है। हम यहां खुशी मनाने आए हैं, हम जीवन खुशी जीने के लिए आए हैं। लाइफ इज टू सेलिब्रेट हैप्पीनेस। हम कहां सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हाँ जी, कोई भी त्योहार है उसका सेलिब्रेशन होता है। जीवन तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए ना, जीवन सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप में से किस किस को बच्चे हैं? वेरी गुड। बच्चे, पोते, जो भी है, बच्चे, छोटे बच्चे। तो मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल में एक दिन के लिए एक्सकर्शन लेके जाएंगे, संडे का या मंडे का एक प्रोग्राम स्कूल वालों ने बनाया कि आपके बच्चे आज स्कूल में बच्चे एक्सकर्शन जाएंगे। तो अब आपका बच्चा पूरा दिन घूमने फिरने जाएगा, तो आप उस बच्चे को कैसे भेजते एक्सकर्शन पर? वन डे, सवेरे जाएगा शाम को आएगा, तो आपके बच्चे को कैसे भेजते हैं? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, क्या तैयारी करोगे? टिफिन देंगे, ठीक है, वाटर बॉटल देंगे और हाँ कैप देंगे, चलिए कैप देंगे और डायरेक्शंस देंगे, ओके, और रुमाल, चलिए रुमाल देंगे, वेरी गुड। अरे खाने पीने की भी कोई चीज दोगे, कोई चॉकलेट्स देंगे, सिर्फ टिफिन नहीं दोगे, चिप्स देंगे, एक्स्ट्रा चीज देंगे, खेलने के लिए चीजें देंगे और एक्स्ट्रा देंगे। आप ये बोलेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ बांट के खाना है ना, आप भी खाओ, आपके बच्चों के फ्रेंड्स के साथ भी बांट के खाना, तो एक्स्ट्रा देंगे और जिस बात से बच्चा और खुश हो सकता है वो भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, मतलब पूरा तैयार करके बच्चे को बास्केट बना करके भेजते हैं, या ना जी। जब एक इंसान, एक कलयुग का इंसान, एक पिता माता अपने बच्चे को पूरा दिन खुश रहने के लिए इतना सारा चीज दे करके, डब्बा डुब्बा भर करके, पूरा बास्केट दे के भेजती है, वो माता पिता जब वहां से इस संसार में हम एक्सकर्शन के लिए आए, खेलने आए, तो खाली हाथ भेजा होगा, कुछ तो डब्बा डुब्बा दिया होगा कि नहीं, कहां गया? और पूरी जिंदगी खुश रहने के लिए वो डब्बे में पर्याप्त चीजें हैं, जितने भी जन्म ले लो, पूरे जन्मों के लिए, पूरे चक्र के में खुश रहने के लिए पूरे सामग्री वो बास्केट बना करके वहां से भेजा, कहां है वो? खो गया है? खोला नहीं, बहुत अच्छे भैया, आपका अगरबत्ती और वो दे दिया जाएगा, उसकी आरती कर लीजिए। खोला ही नहीं तो खाओगे क्या भाई, उसमें तो बहुत कुछ है, मजे करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत खुशी खुशी एंजॉय करने के लिए सारी सामग्री तो उसमें है, हमने तो वो बास्केट ही नहीं खोला, हाँ गायब हो गया, एक्सपायरी। हेलो, ऐसे कैसे भगवान एक्सपायरी चीजें देंगे, ये एक्सपायरी चीजें ये संसार में है, आत्मा तो एक्सपायर तो होती नहीं है, तो आत्मा के अंदर जो वो डाल के भेजा वो एक्सपायर कैसा होगा, वो एक्सपायर नहीं होंगे, कोई नई चीज एक्सपायर होंगे, अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है, तो आत्मा के साथ वाली हर बात अविनाशी है, ओके। सबसे नंबर वन पॉइंट, नंबर वन इसमें लेसन क्या है, नंबर फर्स्ट लेसन ये है, इस ड्रामा में जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, इस ड्रामा में कुछ भी अकल्याण अशुभ है ही नहीं, क्योंकि हम वहां से यहां एंजॉय करने आए हैं, यह अशुभ होगा ही नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं और शिव बाबा को शिव माना कल्याणकारी, शिव माना शुभकारी, यह संस्कृत का शब्द है, अर्थात शिव माना ही शुभ है, शिव माना ही कल्याण है, ऐसे शिव बाबा के हम बच्चे हैं तो क्या कल्याण हो सकता है हमारे लिए, जो हुआ वो बोलिए, जो हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, ये सिर्फ हम बोलते हैं पर सच बात तो यही है, मानने से होगा, हम बोलते हैं जो बोलते हैं उसको मानते नहीं हैं, बोलने से मंत्र जपने से कुछ फायदा नहीं है, या कुछ भी अच्छी अच्छी बातें बोलने से फायदा नहीं है, उसको मानने से फायदा है, हम यदि दिल से उसको स्वीकार, इसको मान्यता बनाएंगे, यू वी बिलीव इट, इट हैपेंस, जो होगा जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो नहीं कहानी सुनते हैं उसके अंगूठा कट गया राजा का और उसने कहा उसके मंत्री ने अच्छा हुआ आपका हाथ कट गया, तो वो अपना हाँ तो वहां उसको पकड़ लिया गया। वो जंगल में शिकार खेलने गया और जंगल वालों ने उसको पकड़ लिया, बलि चढ़ाने गए तो फिर उसने देखा आखिर ये कटा हुआ, अभी कटी हुई उंगली के साथ तो बलि चढ़ाया नहीं जा सकता, तो बच गया। तो ये जो कटा तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये न कटता तो उसकी सिर कट जाता। अच्छा उसको राजा को इतना गुस्सा आया, तुम ये बोलते हो कि मेरा उंगली जो कट गया वो अच्छा हुआ, भाई इसको डाल दो कारागृह में। वो कारागृह में डाल दिया गया। तो जब राजा बड़ा खुश होके आया और उसको बोला कि ये आपने जो बोला ये तो अच्छा हुआ, पर तुमको जब कारागृह में डाला तुमने ये बोले ये भी अच्छा हुआ, तुम मेरे को कारागृह में डाल दिया, ये क्यों बोला? कहते हैं मैं जेल में ना होता आपके साथ होता, आपके साथ होता आपको छोड़ देते मेरे को डाल देते, मेरी बरी चढ़ जाती, तो अच्छा हुआ ना आपने गुस्से में मेरे को जेल डाल दिया, तो अच्छा ही हुआ। हाँ जी, सिर जो कटने का था वो तो अंगुली से ठीक हो गया, सब ठीक है। आज ये ना होता, ये नुकसान ना होता तो ये फायदा ना होता। हर नुकसान के पीछे एक फायदा है, अगर हम गौर करें तो। हर पर्दे के पीछे एक बहुत सुंदर चित्र है। आप सिर्फ पर्दे तक ही अपनी दृष्टि सीमित न रखें। प्लीज ये माने कि हम बच्चे हैं ईश्वर के। कौन कौन दिल से ये मानते हैं भगवान के बच्चे, हाथ खड़ा करें। थैंक यू। अगर आप सचमुच दिल से ये मानते हैं भगवान के बच्चे हैं तो आपके साथ कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। आज से आप गांठ बांध लो। गांठ अच्छा ही होगा। आप पर्दे के सामने जो हो रहा वो ना देखे, पर्दे के पीछे जो बहुत ही कल्याणकारी बहुत ही शुभ होना होगा उसके बारे में सोचे। हर वस्तु खरीदते समय कीमत तो चुकाना पड़ेगा ना, बगैर कीमत के वस्तु मिलेगा? कोई वस्तु नहीं मिल सकती ना। इसलिए बहुत कुछ शुभ चलना हो घटना होगा तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कुछ छोटे मोटे नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे नुकसान ऐसी कीमत है जो बहुत बड़ा कल्याण हमारे सामने आने का, ये बहुत अल्प तुच्छ कीमत है। इसलिए जीवन में कभी निराश न हो। ये परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, हाउ टू फेस दिस, स्ट्रेस्ड है, व्हाई यू थिंक टू मच, इतना क्यों सोचने की यू नो जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखो अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो सारे कायनात संसार के सारे शक्ति को अच्छा करने में सहायक होगा। आप ये मान लेते हो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होना है, देखो तभी भी बुरा, मेरा नक्षत्र ही अच्छा नहीं है, मेरा जन्म कुंडली अच्छा नहीं है, मेरे साथ तो बुरा ही होना है, तो बुरा ही होगा। संसार के सारी बुराई आपके साथ बुरा करने के लिए साथ देगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में शुभ ही शुभ चलना हो, अच्छा ही होना है या गलत होना है, तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है। और सेकेंड थिंग, जब ये संसार नाटक है, रंगमंच है, रंगमंच में मान लीजिए आप में से किस किस को गीत गाना आता है? एनीबडी? ओ वेरी गुड, सिंगर्स, बाथरूम सिंगर। किस किस को डांस करना आता है? वेरी गुड, ओ आप डांस करते हैं, बहुत अच्छा। किस किस को अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलना आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मान लीजिए अभी तो हम कराएंगे नहीं क्योंकि समय नहीं है, समय होता तो आपका आपसे करा लेती। मान लीजिए दो लोग यहाँ स्टेज पर हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, ठीक है, मेरे अपने स्टेप से, आपके अपने स्टेप से, दो लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, तो आप यहाँ आप अपनी डांस अपने स्टेप्स करोगे या अपना डायलॉग बोलोगे या सामने वाला अगला वाला जो कर रहा है उसके स्टेप्स देखोगे, उसके डायलॉग देखोगे, क्या करेंगे, क्या करोगे? हम अपना करेंगे, उसका करेंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, अगला वाला जो है वो गलत कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? अगर मान लीजिए वो अगला व्यक्ति गलत कर रहा है और आप एग्जैक्टली परफेक्टली कर रहे हैं और आपकी दृष्टि उन पर गए, आप ये उनको देख रहे हैं, ये तो गलत कर रहा है, अरे ये तो गलत कर रहा है, ये डायलॉग ही नहीं है, स्टेप भी नहीं है, तो देखने वाला क्या समझेगा, ऑडियंस क्या समझेंगे? शायद इसको आता नहीं है इसलिए उसको कॉपी कर रहा है, देखो उसको देख देख के कर रहा है, और गलत करने वाला कॉन्फिडेंटली गलत कर रहा है पर इधर उधर नहीं देख रहा है वो, हाँ जी। पर जो अच्छा करने वाला गलत व्यक्ति को देखता है, ये तो गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, तो देखने वाला क्या सोचेंगे, गलत कौन है? तो इसमें लेसन क्या है, आप अपना कार्य ठीक करो बस, अगला वाला क्या कर रहा है दैट इज नॉट माय ड्यूटी, ठीक है? तभी आप हीरो बन सकते हो। इस ड्रामा में यदि आपको हीरो बनना है, आप अपना कार्य करें, अपने कार्य पर फोकस रहे, अगला व्यक्ति क्या कर रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि वो मेरे दायरे के अंदर है, इफ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट समबडी, तो फिर वो कार्य स्टेज से उतरने के बाद अकेले में उसको हम करेक्शंस दे सकते हैं बहुत प्यार से, अन्यथा ना दे तो बेहतर। एक सीक्रेट बात बताऊं, यदि आप बहुत ही खुश रहना हो, आप अपने बच्चों को अपने साथियों को भी दो बार नहीं बोलो कोई करेक्शन, दो बार भी नहीं बोलो, एक बार बोला छुट्टी खत्म, आप भूल ही जाओ कोई बात हुई है, हम पूरे पीछे की बात, एक ग्लास इधर से उधर रखा, ये फूलदान इधर से उधर रखा, हमको इतना गुस्सा हो जाते हैं, हम 60 साल की कहानी निकालेंगे, तुम उस दिन भी ये किया था, वो भी ये किया, तो भी ये, अरे ये फूलदान इधर का उधर तुम ही रख दो ना, हम इतनी सारी गलतियां 50 साल की गलतियां निकाल निकाल करके हम कहानी क्यों, व्हाई आर वी मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड, जीवन हम खुद नरक बना रहे हैं। कमिंग बैक टू योर वॉच क्लॉक वॉच, इसमें दो है, ये घड़ी की सुई आगे आगे जाती है, ये पीछे पीछे जाती है, क्लॉकवाइज जाती है और एंटी क्लॉकवाइज जाती है जी, वेरी गुड। अगर ये सुई पीछे पीछे जाए उसको क्या कहेंगे, घड़ी, घड़ी खराब है। अगर ये सुई एक ही जगह पर अटक के टिक 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 उधर एक ही जगह पर ऐसे टिक टिक कर रहा है, ना आगे को जा रहा है ना पीछे को जा रहा है, तो क्या कहेंगे, तो आप फिर उस घड़ी को क्या करेंगे, मैकेनिक के पास छोड़ के आएंगे, मैकेनिक कहेगा भाई ये घड़ी एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ, मैं ठीक करके कल दे दूंगा, तुम कल लेके जाना, तो उसके पास छोड़ देना होता है ना। अब मन की भी, बुद्धि और मन, ये आत्मा में दो सुई है, मन और बुद्धि दो सुई है, अब ये मन और बुद्धि वर्तमान बहुत आगे भी चले जाए, आधा घंटा, अब 8:10 है, ये 9:10 दिखाए तभी भी इसको गलत ही माना जाएगा ना। अच्छा, सही घड़ी वो है जब वर्तमान की समय दिखाए, तो अगर हमारी मन और बुद्धि पीछे की तरफ घूमे और कई बीती हुई 4 साल 10 साल पहले जो घट गई उस घटना में अटक गई हो, उसको क्या कहेंगे, बुद्धि मेरी ये वे हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं, उसको क्या कहेंगे? हैं? मन और बुद्धि, ये भविष्य बहुत आगे के बारे में सोचेंगे उसको क्या कहेंगे? बुद्धि खराब हो गई। अब ये बुद्धि और मन यदि खराब हो गई, कहाँ छोड़ेंगे? कौन से मैकेनिक है, कहाँ छोड़ोगे? तो रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा कि नहीं? तो ईश्वर है इसका मैकेनिक, उसके पास छोड़ देना पड़ता है, अर्थात मन और बुद्धि को उधर दे देना पड़ता है। भगवान भी कहता मैं ठीक करके दे दूंगा, तो देना तो पड़े ना। इसको कहते मेडिटेशन, बस और क्या है? योग कोई मुश्किल चीज थोड़ा ही है, हैं जी? मैकेनिक के पास अपना मन बुद्धि छोड़ दो, वो ठीक करके आपको वापस लौटा देगा। जब तक वो ठीक कर रहा होगा तब तक आपको शांत तो रहना पड़ेगा। घड़ी घड़ी जाओ, घड़ी घड़ी जाओ, अपने मन और बुद्धि अरे ठीक हो गया थी, अरे नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उसको ठीक करने ठीक है? तो इसलिए हम अपना कार्य करें, हम दूसरों की तरफ बुद्धि मन को न जाए, अतीत के बारे में ज्यादा न सोचकर अभी वर्तमान हम खुश रहे। हैप्पी दिस मोमेंट इज हैप्पी, होल लाइफ इज हैप्पी। अगर हर दिन दुखी 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 होते चलेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे, रात तक हम पीछे मुड़ के देखेंगे सारा दिन मैं स्ट्रेस में गुजारा, मेरे मेरे जिंदगी का एक दिन खराब हो गया। फिर अगर यही रिपीट होगा तो खराब ही रिपीट होगा ना। प्लीज अब के बाद जो हो गया सो हो गया, अब के बाद हर दिन हर क्षण हम ऐसा इतना अच्छा इतना खुश वाला बनाएंगे जो पीछे मोड़ के देखो अरे मजा आ जाए, क्या जिंदगी जिया भैया, क्या जीवन है। तो ऐसी वाली जिंदगी जब मुड़ के देखने पर मुझे खुद पर गर्व हो, वो है राजा का जीवन, वो है अमीर व्यक्ति। हां जी, उनके मौत भी शुभ होगा क्योंकि उनके जीवन शुभ है, तो उनका अगला जन्म भी शुभ ही शुभ है। तो कल्याणकारी संगम युग में हम शिव बाबा के बच्चे, हमारे जीवन में हमेशा अच्छा है, हमेशा अच्छा ही होगा। ओम शांति। अब हम आराम से बैठेंगे। मन और बुद्धि को वर्तमान में ले आएंगे। इस क्षण, दिस मोमेंट इन टाइम, अपने मन और बुद्धि को ब्रिकटी के बीच अति सूक्ष्म शक्ति आत्मा हूं इस याद में स्थित करेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सर्वस्व है, उनकी मैं संतान हूं। इसलिए मेरी जिंदगी में हमेशा ही शुभ है, शुभ था, शुभ है, शुभ ही होगा। कल्याणकारी पिता परमात्मा की मैं संतान होने के नाते हर घड़ी मेरा शुभ बीतेगा। ये समय शुभ है, बस मेरा ध्यान अपने कर्मों में, वर्तमान में, और जो मेरा जीवन साथी हर जन्म में परमात्मा मेरा हर जन्म में साथी है, उनकी याद से मेरा जीवन सफल रहेगा। वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये विश्वास खुद पर, खुदा पर जीवन के हर पल को सुंदर बनाएंगे। जीवन यात्रा बड़ा सुखद, मंगलमय हो जाएगा। जहां मेरा कदम पड़े वो शुभ ही शुभ होगा। ओम शांति।